तो ग्रहण लगा हुआ था ग्रहण, और करोड़ों लोग गंगा जी में स्नान करते हुए हरि बोल हरि बोल कर रहे थे अनायास ही। सब लोग मंत्र कर रहे थे महामंत्र और गंगा में डुबकी लगा रहे थे। जन्म के प्रारंभ से ही, और जब वो उत्पन्न हुआ तो इतना सुंदर था जिसका कोई ठिकाना नहीं, और रोता रहता, और यदि कोई हरि बोल कर देता और ताली बजाता हरि बोल बस किलकारी भरने लगता। जगत को जन्म से ही शिक्षा दी, यदि भगवान को पाना है, यदि जन्म में सुखी रहना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति कलौ नास्ति नास्ते वगतिरन्यथा। कलयुग में और किसी भी चीज से, उपास्य से, दान से, पुण्य से, पूजा से, पाठ से नहीं होगा। यहाँ तक कि ठाकुर जी का अर्चन भी करते हो, पूजन भी करते हो और नाम कीर्तन नहीं चल रहा तो अकेला अर्चन पूरा काम नहीं देगा। कलयुग में विशेष करके हमारे महाप्रभु जी कहते हैं, चाहे जीव गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि कलौ अन्य कर्तव्य हरिनाम संकर्तने एव, भगवान के नाम के कीर्तन के साथ में यदि सब कोई कुछ करते हो तो कुछ फल देगा, नहीं तो फल नहीं देगा। इसलिए महामंत्र का कीर्तन अत्यंत आवश्यक है। चाहे पूजा कीजिए, अर्चन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, तप कीजिए, किंतु उसमें कलयुग में यह नाम करना पड़ेगा। कौन सा नाम करना पड़ेगा? जो मन में आ गया वही कर देंगे, राम 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 हरि 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 कृष्ण कृष्ण, फल तो देगा। किंतु हमारे ऋषि महर्षियों ने जिस नाम में सबसे अधिक शक्ति देखी कलयुग के लिए, उन्होंने उपनिषदों में वेदों में इस चीज को वर्णन कर दिया करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले ही। कलिसंतरण उपनिषद में वेद में लिखा गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यद्यपि ये सब युगों के लिए, किंतु कलयुग के लिए ये विशेष है। इसमें एक ही साथ में भगवान के 16 नाम आते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कोई यदि इसको ऐसे कह करके ऐसे कहे हरे राम 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 हरे हरे, या चपटा, उसमें क्या आता जाता है? चाहे इधर से खाओ चाहे उधर से खाओ, उसमें क्या आता जाता है? कोई मिठाई है उसको आगे से खींचे खाओ, चपटा बना लो, किसी का शक्ल बना लो, उससे क्या हर्ज होता है? नहीं, हमारे ऋषियों ने आविष्कार किया, कहा कि देखो समझ बुझ करके करो, इसको जैसा हमने कहा है ये भगवान की मुख की वाणी है, वेद भगवान के आश्वास है, वाणी है, इसलिए उसको अन्यथा मत करो, जैसा है वैसा ही करो। यदि उल्टा पुल्टा कर देगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। उन्होंने लिखा ब्रह्मांड पुराण में, पद्म पुराण में और दूसरे पुराणों में लिखा, उसमें कलिसंतरण उपनिषद में लिखा, लिखा क्या, ये देखो इसका क्रम ऐसे करना, पहले होगा हरे, इसके बाद में होगा कृष्ण। इसको दो बार बोलो, हरे कृष्ण, और इसके बाद में हरे और फिर राम, और उसके बाद में हरे राम, और तब फिर हरे हरे, हरे कृष्ण, इसके बाद में हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, और इसके बाद में ऐसे ही हरे राम 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 हरे। ये ऐसा उन्होंने बतलाया, ऐसी पद्धति है, ये कोई नई बात नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु आए इसको चलाया, नहीं, सब युगों के लिए अपने अपने मंत्र हैं। कलयुग का भी मंत्र वेदों में ही बतलाया, इसलिए इस नाम को ऐसे ही करें। विशेष करके यह नाम, यद्यपि इसमें तीन नाम दिखते हैं, हरि कृष्ण और राम, किंतु इसका भी एक तात्पर्य है, जो लोग सांप्रदायिक मंत्र में दीक्षित नहीं है वो लोग तो हरे कृष्ण हरे राम जैसा हो वो कहेंगे, और जिस हरि कृष्ण राम तीन ही लोग ले लेंगे, किंतु जो लोग गौड़ीय वश में उसके सांप्रदायिक रीति में ब्रज प्रेम लाभ करने के लिए जो चाहते हैं और उस परंपरा में आए हैं, वो लोगों के उपास्य दो नहीं होते, तीन नहीं होते। ये हरि कौन है जो सबका विपत्तियों को हरण करते हैं, चित्त को हरण करते हैं, इसलिए ये कृष्ण ही हरि हैं, हरि अलग नहीं है। और राम कौन है, राधा रमयति इति रामा, राधा रमण, राम का ही नाम यहाँ पर राम है। विशेष करके हम लोग अकेले कृष्ण को नहीं मानते, शास्त्रों में ऐसा नहीं माना गया, राधा जी के साथ में यदि कृष्ण नहीं होंगे तो उस मंत्र का नाम का कोई भी मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पर बतलाया गया है हरे कृष्ण के भी चित्त को अपनी प्रेममयी सेवा से हरण करने वाली राधिका जी का नाम हरे हरा है, और हरा से हुआ है हरे हे राधिके, इसलिए यहाँ पर राधा कृष्ण का नाम है, और दूसरे में भी हरे राम में भी हरे राधिका जी और राम राधा रमण कृष्ण, इसलिए जुगल उपासना का मंत्र है, उसी जगह में लिखा गया है। इस मंत्र का फल क्या होगा, ब्रज में राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा यदि सदगुरु से इसको ग्रहण करके नियमित रूप में इसका तात्पर्य समझ करके और इस प्रकार से यदि नाम कोई करे तो कलयुग में जल्दी ही बहुत शीघ्र ही उसका कल्याण हो जाए, उसको कुछ नहीं करना है, सारे उसको कंसेशन अपने आप नाम करने से ही हो जाएगा, उसी में नौधा भक्ति इत्यादि सभी कुछ उसी नाम के अंदर में आ जाए। यदि और कुछ न करे बस इस मंत्र का करे तब तो हो जाएगा, किंतु शब्द ब्रह्म होना चाहिए। शब्द ब्रह्म माने क्या, गुरु जो मन में धारण करता है और सब समय सर्वदा नाम करता है, नाम में उसकी सिद्धि हो गई है, वो यदि नाम देगा तो तब शब्द ब्रह्म होगा, और नहीं तो अपने आप करने से पुस्तकों में देखा हुआ लिख कर इससे नहीं होगा। इसलिए सदगुरु का पदाश्रय करके इस नाम को करने से सहज ही गति होती है। एक शब्दों में सारे वेद उपनिषद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत गीता का शब्द यही है, हरि नाम सबका सार। इसलिए आप लोग कुछ करें न करें, घर में भी बैठे रहें, एक आदमी मर रहा है क्या करेगा, हरि नाम कर सकता है। अभी आज जा रहा था तो सुनाई पड़ा राम नाम सत्य है, देखो उस समय में भी राम नाम सत्य है, एकमात्र नाम में ही गति है और नाम ही सत्य है। इस चीज को ठीक समझ करके भगवान का नाम जरूर करो, इसके बाद में जो कुछ करना है करो। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसलिए जन्म होते ही ये शिक्षा दी, कम से कम तो आरंभ भी करो 1,00,000 नाम जपने की चेष्टा करो, 2-4 नाम होने से नहीं होगा, होगा कुछ न कुछ लाभ, सांसारिक लाभ हो जाएंगे। और 100,000 नाम जपना, 100,000 से प्रभु उसके हाथ का दिया हुआ कोई चीज लेते नहीं तो नहीं लेते, ये भी समझ रखो। 100,000 से एक नाम भी यदि निकल गया वैसा तो सारे पाप, यहां तक कि प्रारब्ध कर्म भी सब दूर हो जाएंगे, विश्वास रखो। और जामिल ने इतने पाप किए, कोई पाप भोगना पड़ा? अर्जुन और भीम ने लाखों लोगों को मारा युद्ध में, कोई भोगना पड़ा? नहीं। इसलिए सारे पाप भी दूर हो जाएंगे, यदि कुछ किया भी है तो नाम के प्रभाव से सब कुछ दूर हो जाएगा। समस्त नामों में यही नाम सबसे श्रेष्ठ है, करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों के बाद जब बड़े हुए बहुत सी लीलाएं, किंतु सब भगवत संबंधी लीलाएं की। कुछ दिनों के बाद में जब बड़े हुए और तो अपनी संस्कृत की पाठशाला खोल ली, उसमें व्याकरण पढ़ाने लगे। कुछ दिनों के बाद में एक केशव काश्मीरी नाम का बड़ा प्रसिद्ध दिग्विजयी पंडित आया, विश्व के सारे विद्वानों को काशी, वाराणसी, दक्षिण में मथुरा और कहां कहां सब जगह घूम करके समस्त विद्वानों को परास्त करके नवद्वीप में आया। उस समय नवद्वीप में केवल संस्कृत के पंडित ही कम से कम जो पढ़ाते थे वो लाखों थे, तो छात्रों की बात ही क्या, इतना बड़ा भारी विद्या का, संस्कृत विद्या का केंद्र था वो। वहां आया, यदि वहां पर विजय कर लेंगे सब जगह विजय कर लेंगे। वहां के पंडित डर गए उससे, वो सरस्वती का वरद पुत्र था, सबको हरा देता था। जब आया नवद्वीप में ढिढोरा पिटवाया कि कोई भी हमसे शास्त्रार्थ कर ले, कोई भी सामने नहीं आया। हजारों ऊंटों पर, उसकी गाड़ियों पर, ऊंट की गाड़ियों पर, ऊंटों पर, बैलों पर उसकी पुस्तकें लद करके आई, जिसमें वो प्रमाण देता था, और उसको समस्त कुछ कंठस्थ था। पंडितों ने कहा यदि ये छोटा निमाई अभी 16 वर्ष का है, व्याकरण पढ़ाता है, कुछ नहीं जानता, वो हम लोगों का शिष्य है, उसको हरा देगा तो हमारे पास में आ जाए, और यदि वो हार जाएगा तो हम लोग हार जाएंगे, और जीत जाएगा तो हम लोग जीत जाएंगे। वो देखा जी छोटा सा बालक ये कैसा तेजस्वी, कहां रहता है? गंगा के घाट पर शाम को जाता है अपने छात्रों के साथ, उसकी उम्र कम है और उसके छात्रों की उम्र बड़ी बड़ी है, इतना वो विद्वान लड़का है, प्रतिभाशाली। शाम को अपने शिष्यों के साथ में लंबी चौड़ी पगड़ी बांधकर और वहां पर पहुंचा। ये छोटे से निमाई पंडित बड़ी प्रतिभाशाली, अपने छात्रों के बीच में सैकड़ों और बीच में बैठा हुआ, उनसे कुछ संस्कृत में ही वार्तालाप कर रहा है, उनसे कुछ पूछ रहा है, कुछ बतला रहा है। इतने में केशव काश्मीरी अपने शिष्यों के साथ में हजारों आया, वहीं पर बैठ गया और उनकी प्रश्नोत्तरी सब सुनने लगा। ये लड़के तो बड़ी प्रतिभाशाली, और बीच में जो बैठा है ये तो बड़ा तेजस्वी मालूम पड़ता है। किसी से पूछा जो वो बीच वाला लड़का कौन है? अरे यही तो निमाई पंडित है, यही निमाई पंडित है। उसको डर लग गया जी, तो बड़ा तेजस्वी लड़का है। जब इनका व्याकरण का कुछ पूछना चूछना ये हो गया तो बच्चे वो लोग उचक उचक करके देखे, ये केशव काश्मीरी आया है और सारे भारतवर्ष का दिग्विजय करके नवद्वीप में आया है। तो महाप्रभु जी ने, निमाई पंडित जी ने कहा किसी का अभिमान नहीं रहता, जो अभिमानी होता है उसका स्तंभ अभिमान जरूर चुकना चूर हो जाता है, देख लेना हो जाएगा चकना चूर कहीं नहीं कहीं। इतने में वो पंडित बच्चों के पास में आया और बोला इन लोगों से, महाप्रभु जी उसको देख करके बोले, सुनते हैं कि आप केशव काश्मीर बड़े विद्वान आदमी हैं, गंगा जी के संबंध में कुछ आप नए नए महिमा के श्लोक कुछ बोलिए तो देखें। सुन करके बोला जी अच्छी बात है, धड़ाधड़ सैकड़े श्लोक नए नए अलंकार अनुप्रास इत्यादि के साथ, सकी पकी पकी ये तकारे और पकारे, एक बार त त त त करके शब्द निकले, कहीं प प करके शब्द निकले, कहीं कुछ कहीं कुछ, सुन करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसके तरफ में देखने लगे, और वो भी बड़े शान से देखने लगा जी देखो अब हमारी खातिर मिल गए। तो इन्होंने कहा निमाई पंडित ने, पंडित जी आप तो बहुत सुंदर आपने श्लोक बोले नए नए, मैं चाहता हूं कि इसमें कोई भी श्लोक आप लेकर के उसकी थोड़ी सा अर्थ तो बतलाइए, कि इसमें कौन सा गुण है कौन सा दोष है। केशव काश्मीरी के पद्य में कोई भी दोष नहीं होता है, सभी अलंकार अनुप्रास और सभी गुण ही होते हैं, तो आप पूरा न मानिए तो मैं इसके पांच गुण पांच दोष दिखला दूं। तो उसने कहा इसको तो याद होगा नहीं, मैं तो आंधी की तरफ में इतने श्लोक बोल गया तो ये बीच से याद कैसे रखेगा। अच्छा कौन सा श्लोक बोलो, ठीक बीच से एक श्लोक इन्होंने जट जैसा कहा था और भी सुरेले तान से स्पष्ट रूप में उसको बोला, जैसे इसका अर्थ ये तुमने कैसे याद कर लिया। तो ये कहते हैं यदि सरस्वती का कोई वरद पुत्र हो सकता है तो भगवान की कृपा से कोई श्रुतिधर भी तो हो सकता है। अब तो कुछ डर गया भीतर ही भीतर। महाप्रभु जी ने कहा अच्छा मैं इसका दोष गुण मैं बतलाता हूं सुनिए। इन्होंने उसके पहले तो पांच गुण बोले और पांच गुण बनने के बाद में एक शब्द को लिया भवानी भरता। कहा जी आपने ये क्या कर दिया, चौपट कर दिया सब अर्थों। भवानी किसको कहते हैं, भव माने शंकर और उनकी पत्नी भवानी, भव से भवानी हुई, और आपने लिख दिया भवानी भरता तो भवानी का भी अब कोई भरता हो गया। आ रहे समझ में, भव की पत्नी और उनका फिर पति, ये कैसे हो गया। भव माने शंकर जी, उनकी पत्नी हुई पार्वती जी भवानी, अब भवानी का भरता, अब शंकर जी के अतिरिक्त उनका कोई भरता होगा, अब तो उसकी अब लग एकदम गड़बड़ हो गई, कुछ उत्तर नहीं दे सका। इस तरह से उसको पांच गुण और पांच दोष बतलाए, कुछ खंडन नहीं कर सका, मत नस्तक कर दिया और बच्चे लोग ताली बजा करके हंसने लगे। इन्होंने बच्चों को कहा देखो सम्मानित व्यक्ति को हंसना नहीं चाहिए, और उनको कहा अब कल आएंगे फिर हम लोग बात करेंगे, आप जाइए पंडित व्यक्ति हैं सोचिए सोच समझ करके फिर आएंगे। वो तो चला गया रात में अपनी सरस्वती देवी को चिंतन करता हुआ, हाथ जोड़ करके समाधि लगा लिया और बोला जी देवी आपने हमारे ऊपर में इतनी कृपा की और हराया तो एक तुच्छ लड़के से जो कुछ नहीं जानता व्याकरण भी नहीं जानता और उसे हरवा दिया, बड़ी लज्जा की बात, मैं आप प्राण छोड़ दूंगा आपकी आराधना भी नहीं करूंगा। तो वो बोली उसको दर्शन दिया और बोली अरे तुम इसको साधारण बालक मत समझो, ये हमारे पति हैं, असल हमारे पति यही हैं, ये कृष्ण स्वयं हैं, तुम नहीं समझता, अब जल्दी से विद्या का अभिमान छोड़ करके इनके चरणों में गिरो और जाकर के क्षमा मांगो। सवेरे होते ही वहां पर पहुंचा उनके दरवाजे पर और क्षमा मांगने लगा, हमको क्षमा कर दिए मैं समझता नहीं था, ये तो हमारी देवी ने बतलाया कि आप स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने कहा जी देखो विद्या का फल शास्त्रार्थ और तर्क नहीं है, विद्या का फल क्या है भगवान के चरणों में रति रहे, विद धातु विद्या, भगवान को जिसने नहीं जाना वो विद्या विद्या नहीं है। जो लोग कृष्ण को भगवान नहीं जान करके सारे देवताओं को ही कृष्ण के समान समझते हैं वो अपराधी जीव हैं। गणेश, शंकर, दुर्गा, काली इत्यादि भगवान की शक्तियां हैं। भगवान ने उनको शक्ति दी है, उनकी विभूतियां हैं, इसलिए कुछ कुछ देती हैं। किंतु कृष्ण के आसन पर बराबर बैठ जाएंगी, ये अपराध आप लोग मत करें। उनको सम्मान दीजिए गुरु के रूप में, उनको देवता देवी के रूप में, भगवान की विभूति के रूप में। एक चींटी को भी सम्मान देंगे, किंतु एक वेश्या को अपनी मैया के बराबर बनाकर एक आसन पर मत बैठाओ। ये सब चीजों का चित्र गोपीनाथ जी और सब देवता लोग एक नहीं है, गणेश जी एक नहीं है। आज संसार में यही हो रही है और आप लोग भी अधिकांश लोग ऐसे ही करते होंगे। ऐसा मत करो, उनका यथा स्थान दो। बेटा बेटा है, पुत्र पुत्र है, पति पति है, वो पितामह जी पितामह है, ये सबों का साथ में संबंध जैसा है वैसा रहना चाहिए। कृष्ण ही एकमात्र जगत के पति हैं। एते चांस कला पुंस कृष्ण स्तुभम, भागवत ने घोषणा की है, गीता ने में घोषणा की है। इस सब चीजों को ठीक रख करके एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का, ये राधा गोपीनाथ जी का, गोविंद जी का आश्रय, तब तो आपका कल्याण होगा। यही महाप्रभु जी जब और बड़े हुए और थोड़े से बड़े हुए, गया में गए अपने मैया बाप का पिंड देने, पिता का पिंड देने, जैसा लोग संसार वाले करते हैं। गया में गए, स्नान किया, इतने में वो गया के में गदाधर जी का पाद पद्म की पूजा कर रहे थे, इतने में एक बहुत बड़े संत से भेंट हो गई। उनका नाम था ईश्वरपुरी, बहुत उच्च कोटि के, प्रेम में गदगद होकर के सब समय रोया करते। एवं प्रतस्वप्रिय नाम कृत्या जातानुरागोद चित्त उच्चई हसत तथो रोद, कभी हंसते कभी रोते, कभी जमीन में गिर करके लौटते पलौटते, कभी हंसने लगते भगवान के लीलाओं को देख करके, नाम करते। ये वहां पर मिल गए, इनको देखते ही इनको प्रणाम किया, स्वयं भगवान होने पर भी बोले कि देखो ये आपके समान इस समय में कोई भी भक्त नहीं है। मैं आपको गुरु के रूप में वर्णन करता हूं, मैं अपने आपको, अपने शरीर को, आत्मा को, अपनी सब चीजों को आपके चरणों में न्योछावर करता हूं। आप जैसा हो ऐसे हमारे कल्याण की। मैं जानता हूं एक पिंड व्यक्ति देता है तो उसी व्यक्ति का उद्धार होता है जिसको पिंड दिया गया। और उद्धार क्या हुआ, कुछ समय के लिए कुछ कल्याण हुआ, फिर जन्म लेना पड़ेगा। और जो संतों की सेवा करता है, वैष्णवों का संग हो जाता है, उसका कोटि कोटि पितृ लोग ऐसे ही उद्धार उनका हो जाता है। इस चीज को याद रखना है, संतों की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी है, किंतु संत भी वैसा ही होना चाहिए जो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं है, गोपीनाथ के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं, ऐसा संत होना चाहिए, तब तो वैसे ही संत होने चाहिए। तो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया और बोले आप जैसा कहेंगे वैसे ही चलूंगा, यह शरीर मेरा नहीं है, अभी संसार से हमारी नौका पार करके राधा गोविंद जी के चरणों में हमको समर्पण। ये ठीक है, उनको हरि नाम दिया और शुद्ध रूप में दीक्षा दी, और दीक्षा दे करके उनको मंत्र दिया, कुछ मंत्र जपने लगे। अद्भुत उसका फल, क्या फल, कुछ दिनों के बाद में यही महाप्रभु जी काशी में पहुंचे। वहां पर एक कितने हजारों, 88,000, 60,000 अद्वैतवादियों का गुरु प्रकाशानंद उनको वेदांत पढ़ाता था। क्या भगवान का रूप नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, कोई गुण नहीं है, हम सभी ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, आप भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, बेटा भी है, बाप भी ब्रह्म है, चींटी भी ब्रह्म है, अलग से कोई ब्रह्म नहीं, और जब हम गत हो जाएंगे तो हम ब्रह्म मिलकर के एक हो जाएंगे। ये सब विचार बहुत गलत है, ऐसे लोग नाम करने पर भी उनका कल्याण नहीं होगा। अरे परब्रह्म तो एक है, गोपीनाथ जी हैं, दूसरे कोई परब्रह्म नहीं है, इसलिए सभी ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म है तो बिलबिलाकर है, ब्रह्म बूढ़ा होता है, दांत टूटता है, उसको टीबी कैंसर होती है। आजकल जितने बड़े बड़े ये सब अद्वैतवादी हैं उनको यही हो रहा है। क्यों हो रहा? बिलबिलाते हैं, मरते हैं, ब्रह्म तो मरता नहीं है, इसलिए यह बात ठीक नहीं। हम सभी ब्रह्म के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, ब्रह्म नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। तो वो अद्वैतवादी प्रकाशानंद सरस्वती वहां पर बड़ी सभा कर रहा था, उसमें ये पहुंचे, इनको निमंत्रण किया गया वहां पर जाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। तो ये भी कुछ लीलावशता गए, कुछ लोगों के कहने से गए। जब गए तो वहां पर बड़ा पंडाल लगा हुआ था और ऊंचे पंडाल पर उनके सब ऋषि, ये अद्वैतवादी बड़े बड़े सन्यासी सब 60,000 सन्यासी बैठे थे और उसके बीच में वो बैठा था। जब निमाई पंडित जी वहां पर गए, दीनहीन हो करके जहां पर पैर धोते हैं उसी पैर धोने के स्थान पर बैठ गए वहीं, और एकदम ऐसे बैठ गए। अब तो सन्यासियों का जब गुरु था वो झट वहां से उतर करके आया और उनका हाथ पकड़ के बोला, जी तुम तो अद्वैतवादी सन्यासी हो, हमारे ही संप्रदाय के हो, तो नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो। नहीं नहीं, आप लोग महान व्यक्ति हैं, अद्वैतवादी हैं, ऊपर बैठिए, हम तो नीचे बैठने योग्य हैं, हम तो योग्य व्यक्ति नहीं हैं, हम तो मूर्ख हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात मत कहो, तुम्हारे अंदर में सभी बातें ठीक है, किन तुम में एक बात है, तुम्हारा गुरु भी वो कौन, केशव भारती जो तुमको संन्यास दिया था, वो भी भारतीय संप्रदाय का अद्वैतवादी है, किंतु तुम एक बात क्यों ऐसा क्यों करते, तुम ये नाचते गाते हो, रोते हो और नृत्य करते हो, ये ऐसा क्यों करते हो? सन्यासियों के लिए नृत्य करना और संगीत वाद्य बजाना और नाचना गाना ये उचित नहीं। वेदांत पढ़ो और यदि होगा तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे वेदांत में। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके, वो तो बहुत उम्र के व्यक्ति और जिनके 60,000 सन्यासी शिष्य, वो कैसा होगा, और ये तो अभी बालक कभी निमाई हैं, छोटे से अभी उम्र की, हाथ जोड़ करके बोले, देखिए वेदांत में हमारा अधिकार नहीं। क्यों? हमारे गुरुजी ने जब हमको मंत्र दिया तो उन्होंने कहा एक श्लोक याद कर लो, क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, कलौ नास्तेव 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 गतिरंजन, कोटि बार वेदांत का अध्ययन करने से भी उसे कल्याण नहीं होगा। और इसके बाद में हमको मूर्ख दे करके कहा जी यही मंत्र जपो, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम, और इसके साथ में हमको एक और मंत्र दिया, क्या, गोपाल मंत्र। मैं उस मंत्र को करने लगा, मंत्र की ऐसी अद्भुत शक्ति हमने देखा क्या, कोई दोनों के बाद ही में गोपाल मंत्र जपने के साथ साथ में एक छोटा सा गोपाल, कौन, जसोदा का कन्हैया लाल, बहुत ही अलबेला सुंदर, श्याम सुंदर, मुरली बजाता हुआ, मोर पंख धारण किए हुए, ऐसा सुंदर जी हमने जीवन में देखा नहीं। हमने देखा उसको, मैं तो एकदम पागल हो गया, मैं उठ करके खड़ा हुआ, उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, वो पीछे हटता गया। हटते हटते जब एकदम निकट में मैं पहुंचा तो झट न जाने कहा एक पेड़ के नीचे अंतर ध्यान। अब तो मैं रोने लगा, कभी हंसता, कभी चिल्लाता, कभी कुछ करता, मैं गुरुजी के पास नहीं गया, गुरुजी आपने कैसा मंत्र दिया, इसका क्या, न जाने क्या हमको भूत पकड़ लिया, न जाने क्या हो गया, इस मंत्र की कैसी शक्ति है जो मैं पागल होकर के नाचता हूं, कभी कभी गाता हूं, कभी जमीन में लोट पोट करता हूं, मुझको समझ में नहीं आता जो मैं क्या करूं। गुरुजी ने मुझे आलिंगन कर लिया, बोले जे हमारा जन्म भी सार्थक कर दिया तूने, तुम्हारा तो जन्म सार्थक, हरिनाम का करने का फल, मंत्र करने का तो यही फल है, कृष्ण का दर्शन हो जाए, वो पागल हो जाए संसार की दृष्टि से, उन्मत्त हो जाए कृष्ण के नाम में, यही तो हरिनाम का फल है। मंत्र का फल। जिसने अनुभव नहीं किया हरि नाम करते समय, जिसको आनंद नहीं आता, जिसको कोई टेस्ट नहीं आता, नाम जल्दी से रख दें, नींद आती है, उसका जीवन बेकार का। और जिन लोग हरि नाम करते हुए इस प्रकार से करते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान के एक एक अक्षर में ह रे कृष्ण, ये 32 अक्षर में भगवान के 32 रूप से, किसी में राधा गोविंद, किसी में राधा गोविंद, किसी में राधा मदन मोहन, किसी में राधा कांत, किसी में कुछ, ऐसा वो दर्शन करते हैं। और प्रेम में विवल हो जाते हैं, दूसरों को भी विवल बना देते हैं। ये नाम का फल है। इस प्रकार से सारे भारतवर्ष में, अब तो सारे विश्व में, महाप्रभु की कृपा से ही चारों तरफ में ये प्रचार चल रहा है। और थोड़ी सी देखा, जब वहां से लौटे गया से कुछ दिनों के बाद में, उन्होंने व्याकरण पढ़ाना बंद कर, प्रत्येक अक्षर का, धातु का, शब्द का, प्रत्यय का अर्थ क्या करें वो कृष्ण ही देखें सब, इसलिए पढ़ाएं क्या है? अंत में पढ़ाना बंद कर दिया। उनके बच्चे भी उनके साथ हो लिए। धीरे धीरे वैराग्य होने लगा, घर में नहीं रह सके। किसी किसी को बतला दिया, मैं कल अब जाने वाला हूं, नित्यानंद प्रभु जी और उनके साथियों को, चंद्रशेखर आचार्य और किसी किसी को बतला दिया, और किसी को नहीं बतलाया गया। रात हुई, रात होने के पहले आज सवेरे ही